प्रभुपाद जी जब मैं इस्कॉन में प्रवेश किया, एक साल वहां रहा शिकागो इस्कॉन मंदिर में, प्रभुपाद जी नहीं आया और हम उनको मिलने के लिए नहीं गए। लेकिन जिस दिन मैं आया एक साल के बाद, मंदिर का प्रवेश करने के पश्चात एक साल बीत गया, बॉम्बे आया और दूसरे दिन प्रभुपाद महाराज वहां पहुंच गया। वृंदावन से चले आया, 10 दिन बॉम्बे में, फिर मायापुर, वृंदावन, फिर बॉम्बे, सभी जगह प्रभुपाद जी महाराज के पीछे। 1974 फरवरी, मार्च, अप्रैल अंत में बॉम्बे से आया हैदराबाद। प्रभुपाद जी महाराज का कार्यक्रम थे हैदराबाद में, नमपली स्टेशन। 5 दिन प्रवचन सबके लिए, जहेर पब्लिक, और उसके बाद तिरुपति बालाजी जाने का सौभाग्य हुई। प्रभुपाद महाराज विमान के द्वारा हम लोग गाड़ी में बैठ के, 12 भक्त लोग, 4 सन्यासी। उसके पश्चात प्रभुपाद अगला मार्च महीना फिर आया हैदराबाद, और 150 विदेशी भक्त लोग रेलगाड़ी में बैठ के कलकत्ता में हैदराबाद, 2 दिन का रास्ता थे। तो प्रभुपाद का गुरुजी उनको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए आदेश दिया, लेकिन प्रभुपाद महाराज के हृदय में भारत के अंदर प्रचार करने का ज्यादा रुचि थे, ये निश्चित है। भले प्रभुपाद सब जगह, जैसे महाराज जी बताया, 1971 मेरा इस्कॉन प्रवेश करने के पहले 2 साल प्रभुपाद महाराज मॉस्को नगर गए रूस 1 हफ्ते के लिए। एक रूस के व्यक्ति आकर्षित हो गया, मार्क्सवाद के काल में बहुत सारे नियम था और सरकार एक एक चीज देखते थे, लोगों विचार मुक्ति नहीं थे, घूमने का मुक्ति नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद तभी भी वहां गया। कोई विश्वविद्यालय का प्राचार्य के साथ चर्चा करने के बहाना में, और उन्होंने बीज का रोपण किया, और उसी एक वक्त से उस काल में, आधुनिक काल में 80 केंद्र हो गया। तो आप कल्पना करो, प्रभुपाद जी महाराज का प्रयत्न का सफल। भारत में इस समय इसी संस्था के 235 औपचारिक केंद्र, औपचारिक, अनौपचारिक, नामहत इत्यादि सत्संग मंडल हजारों चलते हैं। किसके लिए, क्या प्रयोजन है? जिस प्रयोजन में हम गीता में पढ़ते हैं ना, कृष्ण भगवान गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म क्या है, धर्म क्या है? प्रभुपाद जी महाराज का बारंबार उन्होंने वैदिक सनातन धर्म का शब्द प्रयोग किया। उन्होंने नया कोई बनावटी धर्म चालू नहीं किया। हम देख रहे हैं बहुत सारे इस देश में बुद्धिजीवी लोग जो अपना खुद का विचार फैला रहे हैं, और जिसमें कोई वैदिक ग्रंथों में आधार नहीं है। बड़ी बड़ी दादी रखते हैं, और कोई कोई एक पगड़ी वाला है आजकल, दूसरे पहले ही वो बुद्ध अनुयायी बन गया। बुद्ध नास्तिकवाद, शून्यवाद, निर्विशेष शून्यवादी हम रोज बारंबार बोलते हैं प्रभुपाद जी महाराज के प्रणाम मंत्र। शून्यवादी कौन है? जैन और बुद्ध अनुयायी। बुद्ध अनुयायी कहाँ है? चीन, जापान, थाईलैंड देश। थाईलैंड देश अभी भी संस्कृत विद्वान को सम्मान देते हैं, राज कक्ष के लोग। थाईलैंड देश राज शासन से जुड़े हुए हैं। भारत में नष्ट हो गया, नेपाल में नष्ट हो गया, चीन, जापान, वो सब जगह नष्ट हो गए। क्या नाम है, कंबोडिया नष्ट हो गया, थाईलैंड देश में है। कोई विधि अगर हो प्राचीन वैदिक संस्कृति, लेकिन अनुयायी बुद्ध। तो यही विचार का विनाश करने के लिए प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है दो जगह, पाषंड दलन और हरिनाम प्रचार। हरिनाम प्रचार ऐसे श्लोकों का कंठस्थ नहीं किया, अंत्य लीला में है, आदि लीला में है। पाषंड हिंदी में पाखंड बोलते हैं, एक ही शब्द है, उच्चारण अलग है। पाखंडी हिंदी में बोलते हैं, पाषंडी बंगाली में बोलते हैं, संस्कृत पाषंडी, पाखंडी, पाषंडी। जो वैदिक सनातन धर्म नहीं मानते हैं, जो वेद में है वर्णाश्रम धर्म, चतुर वर्णम माया सृष्टम, प्रभुपाद बारंबार समाज का विभाजन करो, वर्णाश्रम धर्म स्थापना करो। प्रभुपाद महाराज कहते थे मैं संदेश वाहक हूं, मैं कोई नया खिचड़ी नहीं पकाया, नया चीज नहीं बनाया, ये प्राचीन है, सनातन है। अभी एक भक्त नहीं, अनेक, समय का परिवर्तन हो गया प्रभु, ये नया काल है। तो मैं जवाब दिया, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि तो चलते हैं, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। और सनातन धर्म का अर्थ है इसका, ये परिवर्तनशील नहीं है, जो सिद्धांत है उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये भी बोला बारंबार, आप विदेशी लोग, हमारे जैसे लोग, क्योंकि उनके ज्यादा से ज्यादा अनुयायी उसी उन्हीं के जीवन काल में हम लोग थे, गौरव लोग, गौरव बोलो, विदेशी बोलो, जो आपको बोलना है। अभी संख्या यहां 1, 2, 4, 5 गौरव लोग है, सब भारतीय है। लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन काल में मेरा याद है महाराज, हम गए थे वर्धा महात्मा गांधी के आश्रम, प्रभुपाद जी महाराज का निमंत्रण था, रामकृष्ण बजाज, कमल नयन बजाज के दूसरा बेटा, कमल नयन बजाज, हाँ। तो ये गांधी के निकट सहायक आर्थिक बड़ा व्यापारी थे, महात्मा गांधी को खूब सहायता करते थे। तो उनका बेटा प्रभुपाद बुलाया वर्धा, नागपुर से 2 घंटे का रास्ता है गांधी आश्रम। प्रभुपाद जी महाराज का प्रवचन कोई महाविद्यालय में रखा था, और हम 25-30 गौरव अनुयायी थे, और प्रभुपाद को 5 बार बोला हिंदी में प्रवचन दो, हिंदी में प्रवचन दो, प्रभुपाद अंग्रेजी में प्रवचन दिया, क्योंकि उनके अनुयायी गण थे, हिंदी में नहीं दिया। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं। लेकिन ये सनातन धर्म का संस्कार हम गौड़ा लोक नहीं मिला, बचपन में खास हम खुश संस्कार मिला, अच्छी संस्कार नहीं मिला। बाल्यकाल में मांसाहार और मदिरा पान घर घर में होते हैं, धर्म के विधि में, धर्म के विधि में, पाश्चात्य धर्म के विधि में। और यही अनुकरण भारत में बहुत फैल रहे हैं, फैल चुके हैं। केवल गुजरात में और अभी बिहार में नशाबंदी है, बाकी सब जगह खुले हुए छूट। हिंदू शासन आया उसको बंद नहीं किया, सरकार बंद कर सकते हैं। प्रभुपाद इंदिरा गांधी को मिला, प्रभुपाद जी महाराज, उन्होंने सूची तैयार किया कि ये सब विषय उठाएंगे इंदिरा गांधी के साथ। और वो था गीता का शिक्षण होना चाहिए, सब जो आजकल लोग हिंदुत्ववादी बोलते हैं, प्रभुपाद का वही मत था। सनातन धर्म का प्रचार भारत का सरकार के मदद के द्वारा भी होना चाहिए, क्यों नहीं। इंदिरा गांधी ने ये इस देश को धर्म निरपेक्ष देश संविधान में डाल दिया, नहीं थे उसने डाल दिया। प्रभुपाद इंदिरा गांधी के साथ पसंद नहीं थे, भले ही उन्होंने जाके मिला, क्योंकि उनकी सिद्धांत वैदिक सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं था। कैसे ही परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन तो हो रहा है धीरे धीरे। परिवर्तन एक क्षण में क्या बोलते हैं वज्र आघात की तरह नहीं होते हैं, इंद्र का अस्त्र वज्र, तो वज्र जब लगते हैं तो बड़ी विस्फोट होते हैं, तो वो अद्भुत है, हम ना नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों के भावना का परिवर्तन, अच्छा लोगों का भावना का परिवर्तन हम लगे हुए हैं और हो रहा है, अच्छा नायकों का भावना का परिवर्तन, क्योंकि गीता का श्लोक है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो समाज के नायक करते हैं तद तद एवे थरो जनाहा, सामान्य लोग उनका पालन करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, उनके आदर्श व्यवहार अगर हो, अगर वैदिक सनातन धर्म के साथ अनुरक्त है, वैदिक शैक्षणिक पद्धति, अभी भारत में पाश्चात्य शैक्षणिक पद्धति से लोग उन्मत्त हो गया। जब मैं आया प्रभुपाद जी महाराज के, ये सब महाविद्यालय विश्वविद्यालय था, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम था। अभी पागलपन की तरह मथुरा वृंदावन और दिल्ली के रास्ते कितने हो गया, बड़ी बड़ी भवन, पाश्चात्य शैक्षणिक पद्धति, प्रभुपाद गुरुकुल, कितना गुरुकुल, गौशाला, मंदिर, प्राचीन वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान के लिए कितना प्रयत्न किया, और कितना कठोर भाषण उन्होंने, जो लोग अपशब्द समझते हैं अंग्रेजी भाषा में, फूल्स एंड रास्कल्स, मूर्ख और दुष्ट, अंग्रेजी में बारंबार बोलते थे। बहुत सारे लोग प्रभुपाद का ये शब्दों का प्रयोग का निंदा किया, लेकिन प्रभुपाद डरते नहीं थे, निडर व्यक्ति थे प्रभुपाद। उनके आकार भी छोटा था, उनके बड़ी लंबी शरीर नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद डरते नहीं थे, निडर व्यक्ति, और लोगों को बोलते थे स्पष्ट, स्पष्ट वक्ता। प्रभुपाद जी महाराज स्पष्ट वक्ता था, क्यों, लोगों को जागृत करने के लिए, खास करके भारतीय। मैंने सुना प्रभुपाद महाराज, ये प्रभुपाद का स्मरणांजलि चलते हैं, इसलिए याद करना उचित है। प्रभुपाद जी ने यही कहा, मैं एक भारतीय हूं, अगर अनेक भारतीय मेरा जैसे प्रचार करेंगे तो पूरा दुनिया का परिवर्तन होगा। यही भी प्रभुपाद जी कहते थे, यही भी प्रभुपाद जी कहते थे, भारत दुनिया का जगत गुरु है। प्रभुपाद यही दृष्टांत बारंबार देते थे, क्या बोलते हैं, अंध व्यक्ति और पंगु व्यक्ति। प्रभुपाद बोलते थे भारत पंगु है, लेकिन भारत का प्राचीन वैदिक ज्ञान ये उनके भारत का खजाना है, भारत का धन, वैदिक ग्रंथों का ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद पुस्तक वितरण पुस्तक वितरण पुस्तक वितरण के पीछे कितना बल देते थे, पुस्तक वितरण करो। मार्क्सवादी प्रभुपाद कहते थे, मार्क्सवादियों ने अपना सिद्धांत फैलाया पुस्तक वितरण के द्वारा, तो हम भी फैलाएंगे वैदिक संस्कृति और वैदिक मत, सनातन धर्म का विचार पुस्तक वितरण के द्वारा। अभी मैं कल अरबी पुस्तक का वितरण अरबिस्तान में आरंभ हो गया, ये समाचार मैंने फेसबुक में देखा। लेबनान देश में इस्कान के सारे, प्रभुपाद जी के सारे भक्ति वेदांत पुस्तक न्यासों के सारे पुस्तकों के खुले हुए बिक्री हो रहा है, और एक भगत भी धोती कुर्ता पहन के बेचते थे अरबिस्तान के बीच में। प्रभुपाद ने यही कहा कि यही मुसलमान लोगों के बीच में जो प्रचार करेंगे, मैं उनके चरण धूल मेरे सिर में रखेंगे, ऐसे कहा। इतना कठोर प्रभुपाद का कठोर वचन, कौन जाएंगे वहां, मुश्किल है, तकलीफ है, क्योंकि उनके मुसलमान के अतिवादी लोग दूसरे लोगों का कत्ल करने में आनंद लेते हैं। दुख की बात है, सब ऐसा नहीं है। देखो अरबी देश मोदी को कितना स्वागत किया, अभी भारत का प्रधानमंत्री कहा यूएई कहां कहां गया, बहरीन, दो तीन देश में जाके आया अभी थोड़े दिन पहले, और कितना स्वागत उन्होंने ही किया। मंदिर का निर्माण भी होने अबू धाबी और दुबई के बीच में, अरबी लोग इसमें कुछ रुचि ले रहे हैं, आश्चर्य की बात है। और ये खुले हुए विचार प्रभुपाद का प्रचार प्रवृत्ति के प्रभाव से अभी बहुत लोग शाकाहारी बनते जा रहे हैं विदेश में। काफी लोग सोचने लगा ये पशु का कत्ल पापाचार है, ये सनातन धर्म में तो एक मूल सिद्धांत है, खास करके गौ माता का रक्षण। गीता में लिखा है ना, कृष्ण ने अर्जुन कृषि गौ रक्षा शब्द गीता में है, और ये नेपालियों को क्या बोलते हैं, गुरखा शब्द का अर्थ है गौरक्षक। प्रभुपाद जी महाराज ये सब शिक्षण दे रहे थे, लेकिन गौड़ा लोग, हमारे जैसे लोग, समझना इतना आसान नहीं है। कुछ लिया कुछ खिचड़ी भी पका रहे हैं, पाश्चात्य विचार मिला रहे हैं, मिलावटी कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं यूएसए, हमारे काफी भक्त लोग धोती पहनने में शरणान्वित होते हैं। अरे धोती, मैं सब जगह विमान यात्रा के काल में और गाड़ी के यात्रा में धोती टीला जाके सब जगह, क्या क्यों शर्म आना चाहिए, हम प्रचार के लिए हैं, ये प्रचार संस्था है। प्रभुपाद के काल में सब उन्होंने उनका उपदेश स्वीकार करते थे, अभी मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन चलते भी है, रविवार पहनते हैं। इतना आसान नहीं है, एक दृष्टि से लोगों का पूरा जो मनो भावना है उसका परिवर्तन लाना, उसके बच्चा को शिक्षण देना, उनको भी शिक्षण देना, ये बहुत बड़ा काम है। प्रभुपाद आशा रखते थे, बड़ी आशा, वो बोला आशा, वो बोलते रहते थे बारंबार, आशा है समाज में परिवर्तन होगा, आशा आशा है, और फल हम देख रहे हैं, काफी सफल प्राप्त किया। और हम जाने वाले हैं, हम ज्यादा दिन तक, प्रभुपाद ये भी बोलते थे, उनका उम्र ज्यादा था और 42 साल बीतने आ गया जब से चले गया, मैं वृद्ध हूं, मैं कभी भी, मेरा मरण कभी भी होगा, आप लोग ये प्रचार करते रहिए, और हो रहा है, कर रहे हैं। हम एक प्रभुपाद जी का गुरु भाई थे जो 25 साल पहले देह त्याग किया, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, वो अंग्रेजी बोलने नहीं आते थे, और उन्होंने कहा कि हमारा एक दोष है हमारे गुरु भाइयों के बीच में कि हमारे गुरु भाइयों का प्रशंसा नहीं करते हैं, हमको करना चाहिए, इसलिए मैं हर साल यहाँ भक्ति चारू जी महाराज के जन्म का महोत्सव में आता हूं, क्योंकि हमारे गुरु भाइयों का जो प्रचार है प्रशंसनीय है, कितने जगह जाके प्रचार कर रहे हैं और कितना फल उस प्रचार का हमारे आंखों के सामने है। ये प्रभुपाद जी हमारे गुरु भाई लोग जो प्रचार प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, प्रभुपाद जी का आशा पूरी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि गुरु जी को संतुष्ट करना है, लेकिन कभी कभी गुरु भाई लोग, प्रभुपाद के बहुत सारे ईर्ष्यालु गुरु भाई थे, प्रभुपाद को मान देना नहीं चाहता था, प्रभुपाद का जीवन का ये एक कटु सत्य है। उन्होंने एक पत्र में लिख दिया भक्ति वैभव पुरी महाराज को कि लगते हैं कि आप एक गुरु भाई है जो ईर्ष्या नहीं रखते हैं। कहने का तात्पर्य है सब गुरु भाई ईर्ष्यालु नहीं थे, लेकिन बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। प्रभुपाद इतना सफलता प्राप्त किया, लेकिन लेकिन श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी चतुर्थ स्कंद, अभी पूरा श्लोकों का संख्या का याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिख लिया कि मैं और मेरा गुरु भाई हम साथ में प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी हजारों शिष्य बना रहे हैं, हम भी हजारों शिष्य बना रहे हैं। ये तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिख दिया, ये प्रमाण है कि ये अपसिद्धांत जो चलते हैं ऋत्विकवाद के नाम से, वो अपसिद्धांत ही है, क्योंकि गुरु को शिष्य बनाना चाहिए, और भक्ति सिद्धांत का इच्छा था, प्रभुपाद जी महाराज की इच्छा थे, मेरा सब शिष्य हजारों का शिष्य बनाओ, और शिष्य का अर्थ है वैदिक सनातन धर्म का पालन और प्रचार करना। तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत ज्यादा बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं महाराज मेरा बहुत प्रशंसा किया, मैं यही नहीं बोल सकता हूं कि महाराज असत्य बोल रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं मैं एक सामान्य मानव हूं, और ज्ञान अनंत, भगवान अनंत, हम जो सीख लिया आज तक लिखते हैं वो कुछ नहीं है, कितना ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है जो आज तक अध्ययन ठीक ढंग से नहीं किया। और अंत में ये विचार है मन में कि अगर हम सब भगवत गीता कंठस्थ करने का प्रयत्न करेंगे तो ये प्रभुपाद जी महाराज और उन्हीं के प्रचार करने वाला अनुयायियों का शोभा बढ़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भक्ति चारु महाराज की।
बाशुघोष प्रभु का एक गुण ये है कि एक महान गुण है कि भारतीय संस्कृति को जो कृष्ण भक्ति का आधार है उसको बहुत हार्दिक रूप में ग्रहण किए हैं और जहां भी ये इसका अवमानना होता है भारतीय संस्कृति का तो एक शेर जैसे बाशुघोष प्रभु जाके उनको दबाते हैं। इस सिलसिले में मैं तो ये कह सकता हूं कि यद्यपि बाशुघोष प्रभु का जन्म अमेरिका में हुआ था वैसे शारीरिक विचार से वो अमेरिकन है बल्कि वो भारतीय से भी ज्यादा भारतीय है। और ये है प्रभुपाद के शिक्षा का एक दृष्टांत, उज्जवल दृष्टांत। असल में यद्यपि मैं बोला भारतीय से भी अधिक भारतीय बना लेकिन इसका अर्थ ये है कि उन्होंने ये जो भौतिक स्तर, शारीरिक भौतिक स्तर जो है मेटीरियलिस्टिक स्तर से आगे बढ़कर आध्यात्मिक स्तर पर आए हैं और उस विचार से उस स्थिति में रहकर उन्होंने जो कुछ कहते हैं और करते हैं उस स्थिति में रहकर ही उन्होंने करते हैं। सो इट्स अ वेरी विविड एग्जाम्पल दैट यू हैव ट्रांसेंडेड द बॉडीली प्लेटफॉर्म एंड कम टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एंड द क्रेडिट गोज टू श्रील प्रभुपाद। इट्स ऑल ड्यू टू हिज टीचिंग्स। सो नाउ वी विल रिक्वेस्ट महावन महाराज को कुछ कहने के लिए, प्रभुपाद की महिमा कीर्तन करने के लिए। महामन प्रभु एक बहुत आदर्श भक्त हैं। बचपन से उन्होंने भी प्रभुपाद के पास अपने आप को समर्पण किए हैं। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग, प्रभुपाद जी के संस्पर्श में, इस्कॉन के संस्पर्श में आए हैं और तत्पश्चात ये भक्ति मार्ग में युक्त हो गए हैं और तब से इस मार्ग में ही रहा। महामन महाराज के साथ एक साथ सेवा करने का मौका हमको मिला था कुछ समय के लिए मणिपुर में। मणिपुर में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वहाँ इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के आयोजन किए थे, मंदिर बनाए थे, तो महामन प्रभु उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे मंदिर का और मैं वहाँ जाया करता था। तो उस समय आई हैड अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ वेरी इंटीमेट डीलिंग विथ महामन प्रभु एंड सो नाउ वी आर अगेन केम वेरी क्लोज। लाइक महामन महाराज इज इन इंदौर एंड आई एम इन उज्जैन। सो थैंक यू सो मच महामन महाराज, प्लीज ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।
First of all, I would like to thank His Holiness Bhakti Chiru Maharaj for this wonderful festival. I look forward to this festival every year. So many wonderful devotees are here and so much glorification of Srila Prabhupada and devotees in general because Krishna is more pleased when we glorify His devotees than when we glorify Him. I am also very grateful to Bashugesh Prabhu, my God, dear God brother, and Pandit Sanskritananda ji. They are always together. They always go in a pair. Very good pair. it is an honor to be here today. Very near this place is a place called Narayana. Many of you might have been there. That is a place where Krishna and Sudama, when they were students here of Sandipani Muni, they were sent by Guru Mata to collect some firewood for the yajnas. So somehow a storm came and lightning and very heavy rainfall, shivering cold. Somehow they spent the night together. The next morning, when they reached the ashram of Sandipani Muni, Sandipani Muni appreciated the qualities of Krishna and Sudama, their surrender to the order of their guru and guru patani or guru mata. He cited one very nice verse which occurs in the 10th canto, 80th chapter of the Bhagavatam. Etad eva hi satya shishya kartavyam guru nishkritam tadvai vishuddha bhavena sarva artham atma arpanam guru. A very meaningful verse. This means that it is the duty of a sincere disciple, satya shishya, one who is actually sincere. Etad eva hi satya shishya kartavyam iti kartavyam guru nishkritam, to absolve himself of the debt that he owes to his spiritual master. And then he goes on to say in the same verse, tadvai vishuddha bhavena, disciple should always maintain a very friendly attitude towards the spiritual master. Tadvai vishuddha bhavena, then he goes on to say, sarva artham atma arpanam guru. Sarva artham, all his wealth is meant for the spiritual master. Sarva artham, no hiding anything. Sarva artham atma arpanam means even his own very life is meant for his guru. Actually, the obligation that we have to Srila Prabhupada, all of us, whether in the first generation, second or third generation, we can never repay the debt that we owe to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada mentions this in a purport in the Srimad Bhagavatam, where he says in the 4th canto, 22nd chapter, he uses the word, actually the verse is from the sloka itself, vinodapatram. Vinodapatram means that a person who thinks that he can absolve himself of the debt that we owe to his spiritual master, he is a joker. Vinodapatram. It's a joke to think that we can liquidate the debt we owe to our spiritual master. It is just not possible, regardless of how much service we do, no matter how many temples we build, no matter how many books we distribute, no matter how many devotees we make, whatever services we do, no matter. But we can never liquidate the debt that we owe to our spiritual master, Srila Prabhupada. However, Srila Prabhupada also did say that if you at all feel indebted to me, if you feel any obligation to me, then preach. Preach as vigorously as I preach. Means as vigorously as Prabhupada preached. So this was his guideline. He said, preach always. And Srila Prabhupada, we all know, Bhakti Churu Maharaj mentioned this very elaborately, Vasu Gosa Prabhu also mentioned this, was a very, very powerful speaker, preacher, very powerful preacher, because of his surrender to his own Guru Maharaj, Sripad Bhakti Siddhant Saraswati Thakur. And Srila Prabhupada often used to refer to his Guru Maharaj. What can I say about him? He was a Vaikuntha man. Vaikuntha in the general sense, which includes Goloka and everything. He was a Vaikuntha man. And similarly, also Prabhupada used to say, hey, that he was a Simha Guru, a lion guru. materialist, atheist, mayavadis, this vadi, that vadi, they would not dare to face Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur because he was so powerful, just like a lion. And we all know that the progeny of a lion will be also like a lion. And that is Srila Prabhupada. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur trained him to be also a very powerful speaker like a lion. Even though he was very powerful speaker, preacher, like a lion, the demeanor of a lion, power of a lion, his heart was as soft as butter. His heart was as soft as butter. So in the same coming along in the generations of lion, I feel that Prabhupada's followers have also inherited this quality of being very bold and forceful preachers. And we have right here in front of us His Holiness Bhakti Chiru Maharaj, who has also imbibed this quality of being a very powerful, bold and fearless preacher with so many innovative ideas. And I feel confident that due to the power of this movement, the association, this power, lion-like power, will go on generation after generation after generation. There are two or three specific or very special achievements of Srila Bhakti Chiru Maharaj which I would like to recount. There are many achievements. There is not so much time to enumerate all the achievements. But I am particularly impressed. I'll recount three. The first one being this magnificent temple here, built in a record time of 10 months. It is inconceivable. It takes 10 months just to draw the plans for a temple. And here we see a temple ready, functioning within 10 months. Inconceivable. Special mercy. Second thing, the Abhay Charana series, which attracted and were the source of inspiration for thousands, if not millions of people all over the world. Different languages. It was my favorite at that time, the Abhay Charan series. I also had the fortune to play a small role. The third thing that impressed me. As I said, this list could go on and on, but I'm summarizing. The Guru Parampara deities that we see now, almost all altars of ISKCON. As it is, the altar's atmosphere is surcharged with divine spiritual energy. But since the introduction of the Guru Parampara deities in the divine form, the atmosphere has become even more surcharged. I really thank Bhakti Chiru Maharaj for this very innovative idea. Now, I'd just like to recite one of my favorite verses from Chaitanya Charitamrita, since here quite a lot of mention of lions is being made. First of all, we find in the Bhagavad Gita itself, Krishna refers to Arjuna as Purusha Vyagraha. That means a tiger among men. He tells Arjuna, you are a tiger among men. And Sri Krishna Das Kaviraj, he has very eloquently stated in one verse, I would like you to recite this after me. First, I'll do it once all the time, then I'll write to request you. Chaitanya Simhera Avatar Navadvipe Simha Griva Simha Virya Simharera Huhunkara. Please recite after me. Chaitanya Simhera Chaitanya Simhera Avatar Navadvipe Avatar Navadvipe Simha Griva Simha Virya Simharera Hunkura. What this means is, Krishnadas Kaviraj so eloquently, of course we know Narsingha Dev as a lion, but he explained Chaitanya Mahaprabhu as a lion. And he says, Chaitanya Simhara Avatar Navadvipe, and he says, Simha Griva, he has the shoulders of a lion, the neck of a lion, and the power of a lion, and above all the roar of a lion, to be able to frighten all the atheists, Mayavadis, to run away. This was one verse from the Chaitanya Charitamrita. Although ferocious like a lion, his heart is like that of butter, melts so easily. So I would like to recite just three more pastimes of Srila Prabhupada. The first part, most of these pastimes, as my godbrothers have stated, related to book distribution. Because Srila Prabhupada was very fond of book distribution. His mission was greatly to foster and enhance book distribution. So this pastime was told by one dear godbrother, Bhagwat Prabhu, that once Srila Prabhupada was in a room with a life member, and after the life member left, Bhagwat also happened to be in the room. Prabhupada asked Bhagwat Prabhu, "Did you understand the verse that I quoted to this life member?" So actually Bhagwat had no idea what Prabhupada had quoted. So Prabhupada told Bhagwat, "These books are meant for studying. Unless you read them very thoroughly, how will you be able to preach?" And then Prabhupada went to say that I read these books. Because whenever I read these books, I find something new in these books. Then Prabhupada revealed the actual mystery. He said that I find everything, every time I read these books, something new, because these books are not actually written by me, they are dictated by Krishna, and I am simply writing them. So we must take to reading these books very sincerely. Prabhupada asked this Bhagavad, even to the extent, what is the verse number of this? Bhagavad didn't know. Prabhupada said everything, you should know verse, where it occurs, number of the verse, everything. The second also relates, the second item that I would like to speak about also refers to book distribution. This is also narrated by Bhagwat Prabhu. This is an incident that took place in Mayapur. One time Srila Prabhupada was speaking to some group of devotees and he said that actually he was in Golok Vrindavan. He did not want to come to this material world. And Lord Krishna approached him, "You have to go and save the humanity on earth." Prabhupada said, "It's a horrible place. I don't want to go there." So Krishna reassured him, "But I will take care of everything. I will make sure that there are so many palaces for you. all facilities for you. Please go. Still, Srila Prabhupada was not willing to come. Then finally, Krishna said, look, on the earth there is dire necessity for preaching. You will be going there and you will be writing books, and through your books so many devotees will be joining. When Srila Prabhupada heard that, he agreed to come to this material world. This is the episode as I read from Bhagavat Prabhu. Prabhupada paid so much attention to his books. Now the last episode that I would like to mention concerns an incident in Hyderabad. This is sometime during 74-75. So Srila Prabhupada had just arrived in Hyderabad, and the room that he was staying in, it had a very sort of awkward shape. Prabhupada's principles or habit, you can say, was that as soon as he entered a new place, first thing he would do, he would ask his disciples to hang a picture of his Guru Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, on a wall. And he instructed his disciples, please do that. So, because of the awkward shape of the room, the disciples were struggling. They just could not figure out a way to hang the picture. They tried, finally, they go, Prabhupada, we are not able to hang this picture because the room is so awkward shape. Prabhupada said, give me, I will do it. Prabhupada took the picture and within 1 second he put the picture. Then Prabhupada made a very profound statement. He says, it takes intelligence how to do things. Now I'm coming to the point which I want to make. Prabhupada said that it takes intelligence, certain kind of intelligence. Then Prabhupada, he narrated a story of Columbus. This story is narrated in the folio, in the Veda base. If anyone would like to check it, please check it under Columbus. Very detailed, very informative story, instructive story about Columbus. So Prabhupada narrated this story from his own mouth. Prabhupada said that Columbus, he had achieved wonderful, he was a very brave and intelligent explorer. Amongst other things, he showed that the earth is round. That's besides the point. Then other things, he was the first person to discover America, although someone else got the credit for it. But when he returned after his strenuous journey in very small boats and with very limited facilities, practically no facilities, and hardly any manpower, when he returned, the king of Portugal, Ferdinand, wanted to honor him. Wonderful feat, considering the very insignificant facilities that were available for him. So the feast was arranged in his honor. And king in particular was glorifying him. And other members also were glorifying him. What an achievement! Just see how brave and how intelligent Columbus is. He has discovered a new land. They thought it was India, that's another thing. But it was a very great achievement anyway. So, on the whole, everyone was glorifying Columbus. But inside that party, there was one person who was very envious of Columbus. And he was always nagging at Columbus. Why is Columbus being so much glorified? We are Spanish and Portuguese people, we are all very brave people. any one of us could have done this. Why is he getting so much glorification? I don't think he deserves all that glory. Columbus didn't take this criticism very seriously because a great man, he's not bothered by the criticism of ordinary people. Just like the caravan passes by, the dogs bark, but the caravan goes on. So he didn't take it seriously. But when this man became too much, he wanted to teach him a lesson. And he told him. At that time in the party, he was eating boiled eggs. So he took up one egg and he threw out a challenge to everyone. I'm just using this as an example. Keep this egg standing vertically without any external support. Horizontally is easy, anyone can do. Keep this vertically without any support, external support. So he threw this challenge to everyone. So no one could do it. Then he challenged that person who was criticizing him. You try it. So he denied, I cannot do it. And he told Columbus, you also don't do it. You'll make a fool of yourself. You won't be able to do it. Columbus said, I can do it and I will show you how to do it. He took that boiled egg and a knife, scraped the bottom part of it. It became flat and there, the egg was standing by its own support. So why did Prabhupada give this example? Prabhupada gave this example, Columbus had a very special intelligence, which Prabhupada also mentions is given by Krishna. Krishna says, I am the intelligence among men. So why did Prabhupada use this example? He used this example to say, as many people have said, Vasudev Prabhu especially mentioned very categorically, many of his god brothers were very envious of him. Some were very favorable also, some glorified him also, but some were very envious. So Prabhupada used this example that when he returned from America after achieving the greatest miracle in creation, you would say, there is no other miracle as great as what Prabhupada achieved. The greatest miracle in creation, after achieving that miracle, Prabhupada came to India. Many of his god brothers were very happy. They could not believe our Guru Maharaj, that means Bhakti Siddhanta Saraswati's wish has come true. They were overjoyed, many of them. However, some of them did not accept Prabhupada's achievements, were rather envious, and even had the audacity to say, we could all have done this. They were saying like that. They had the audacity to say, as they were not able to do even a fraction of what Prabhupada did, but they had the audacity to say, we could all have done that. And why could they have done that? They are saying, this would have happened anyway. What would have happened anyway? The preaching in America. And why would that happen anyway? According to their logic, because it is said in the Chaitanya Bhagavat, Praitvetya Achayatra Nagaradi Gram Sarvatra Prachar Hoibe Morinam. Because Chaitanya Mahaprabhu has already predicted that his mission will go on. His names will spread all over the world. Sarvatra Prachar Hoibe Morinam. So it was bound to happen anyway. These are some of the words which Prabhupada's god brothers were saying. They did not give credit to Prabhupada. My question would be, if it was going to happen anyway, then why didn't it happen until Prabhupada made it happen? Srila Prabhupada made it happen. He narrated this story. He had the unique qualities of being able to understand the people, the mentality of the people, the situation, and the ability to make adjustments as were required. And above all, the main quality that he had was the surrender to his own Guru Maharaj, Sripad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who empowered him for this great mission. I doubt whether any other person could have achieve this miracle because of the surrender to his Guru Maharaj. He was able to achieve this. We can make more advancement in Krishna consciousness by the blessings of spiritual master and the other Vaishnavas than by our own efforts. Just one other story. Tamal Krishna Maharaj, once he was a little worried that because of intermingling due to our preaching activities, sometimes we may have to intermingle with non-devotees. So he was very worried. And this is legitimate concern also. So he approached Prabhupada, will we be able to remember Krishna at death if we are mingling with or intermingling with non-devotees? Prabhupada said that because we are taking these risks for Krishna, so Krishna appreciates our service. And at the time of death, he will enter into the recesses of our mind and our heart and drag us back to Godhead. And then he went on to say that as long as we are doing something without any personal motivation, then Krishna will make the impossible thing possible. I would just like to conclude by reading my offering from just a few years ago, if you don't mind, Maharaj. Can I? Just a few years ago, I wrote this offering. Dear Srila Prabhupada, is it on the board? Yes, it's on the board. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances at Lotus Feet. It is my exceptional good fortune that I have come under the shelter of your divine grace. And I pray that you always take charge of my life. I only wish to have you as my loving master eternally, for you are the embodiment of Lord Krishna's mercy. The debt that any of your disciples or followers, myself in particular, owe to you is insurmountable and cannot be repaid even in millions of lifetimes by any means, including any amount of service, etc. But by strictly following you and cultivating a dynamic preaching spirit, we can only hope for your pleasure. This is what Prabhupada said. If you really feel obliged to me, then preach. Preach as vigorously as I preach. Means as vigorously as Prabhupada preaches. Once, Srila Prabhupada, when you were not so well, some early disciples asked you if they could invite some other Gaudiya Vaishnavas to facilitate the growth of their young and tender creeper of devotion. At that time, you had tears in your eyes. And you said, my spiritual master was very special. He saved me. Later on, you revealed that this type of question was an insult to the spiritual master because the spiritual master's mercy is always available, even in his physical absence. Similarly, Srila Prabhupada, we think that you are a very special being, an intimate associate of Lord Chaitanya. Srila Prabhupada, because of your divine qualities, you were so dear to everyone, and you cared for even the most insignificant servants. This is a reflection of Lord Krishna's quality of gratefulness, which makes him think that what he gives to his devotees is insignificant, and that what the devotee gives him is Gurikrit or is Gurikrit great. At the time of inauguration of your palace of gold in New Vrindavan, enthusiastic devotees asked you if your palace could be illuminated by jewels as during the time of Lord Krishna. You replied, "My followers are my jewels. They will illuminate my palace, and not only this palace, but the whole world." Similarly, Chaitanya Charitamrita states, excuse my Bengali, it's not so good, but Jai Shri Chaitanya Chandrera Bhakta Chandragana Sabara Premi Jyotishna Ujjwala Tribhuvana. All glories to the moons who are devotees of the principal moon, Lord Chaitanya. Their bright moonshine illuminates the entire universe. With little realization, I take the liberty to quote another verse from Chaitanya Charitamrita. Yadyapi amara guru Chaitanya Radas tathapi janiye ami tanhara prakash. Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Chaitanya, I know him also as a plenary manifestation of the Lord. From Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada, please once again accept my millions of obeisances and thanks for saving me. Srila Prabhupada ki jai. Thank you. Thank you. Hare Krishna.
Hare Krishna. Thank you.
Thank you so much.
Hare Krishna. Thank you so much, Mahaman Maharaj. So now I'll request Bhakti Prem Maharaj to come and glorify Shri Prabhupada.
Nasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militanjana Tasmai Shri Gurave Namo Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtapatale Srimate Bhakti Vedanta Swaminite Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatta Dashatarine Manchakalvatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Memorial Festival ki, Shishimat Bhakti Charishami Guru Maharaj is offering mention that according to Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada is his most munificent. Also in Gopi Git, according to Gopis also, Srila Prabhupada is most munificent. When Gopis were crying in separation of Krishna, Narayan came, still they are not satisfied. Without Krishna they are not happy. But that time they are remembering Srila Prabhupada by reciting this verse. I heard this narration from Guru Maharaj in other lecture. So, Srila Prabhupada is not an ordinary person. His magnanimity, we cannot explain. There's so many people claim they are magnanimous. So many people claim their leader are magnanimous. But they don't know what is the problem of this world. What is the treatment? They cannot diagnose what about treatment. But Prabhupada diagnosed what is the disease of this world. He mentioned that the only requirement, only treatment is this. Required is why the whole world is suffering? Due to shortage of the Vaishnavas, Prabhupada mentioned, Lok Dukhi Vaishnaver Kripa Rabhave. The whole world is suffering due to shortage of the Vaishnav who suffers by seeing the suffering of others. So Prabhupada not only diagnosed the problem of this world, not only prescribed the medicine, he also made the factory where we can produce that Lok Dukhi Vaishnav. What is the name of the factory? So we are so fortunate, Srila Prabhupada, in this hospital, he is not only curing the patient, all the patient become after some time, after doctor. Not only doctor, what type of doctor? Lok Dukhi Vaishnav. So we are so fortunate, we are patient now, but if we remain in this hospital, one day we will become Lok Dukhi Vaishnavas. Sometimes parents cannot understand why the children, by forgetting us, they are joining this con. Because they understood what is the goal of life, what is the disease of this world. Why they want to sacrifice themselves? It is the only conviction of, and by this conviction comes from Srila Prabhupada. During Dapar Yuga, gopis are going to Krishna by giving all family members. People cannot understand why, what had happened. The same thing happens now also. Why parents cannot understand why they are leaving us and joining ISKCON. So Prabhupada has made ISKCON in the Rash Leela where all are coming. Srila Prabhupada ki jai.
Om Ajnanatimandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jana Tasmai Sri Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Tasatvadeshatarine Vancha Kalpataru Bhasya Kripa Sindhu Vaivacha Patitanam Pavanibho Vaishnavibho Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivashadi Sri Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, when the Lord makes a prediction, how does He fulfill His prediction? It is said, He fulfills His prediction through His some confidential devotee. As Sri Chaitanya Mahaprabhu predicted 500 years ago, His glorious name and the Hare Krishna Mahamantra would be broadcast all the town and cities all of the world. Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur desired to fulfill this prediction. Now it is fulfilled by our ISKCON founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So now I want to speak in Hindi language. Yeah, Prabhupada is ISKCON Pratishtha ki. Ye ISKCON ek Vaishnav Tirtha hai. Is Tirtha mein sabhi Vaishnav hai. Iska mana jata hai Vishwa Manava ke Milan Tirtha hai. Is Tirtha mein sabhi Krishna ka Das hai. Chaitanya Mahaprabhu ka bhakta hai aur sabhi Srila Prabhupada ke unugami hai. Ye Vaishnav Tirtha hai, Vishwa Manav ke Milan Tirtha hai. To Prabhupada kaise ye successful hua? Na Prabhupada apna Gurudev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ka jo 62vaan Vyasa Puja usav palan kiya tha ये बम्बे में उस समय प्रभुपाद बंगाली में एक आर्टिकल लिखा था और एक अंग्रेजी कविता लिखा था, तो अंग्रेजी कविता जब पढ़ाई किए तो वो कविता था माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। ये जब प्रभुपाद पाठ किए थे तो उस समय वो कविता में से एक स्टैंजा ये भक्ति सिद्धांत सजेटर का मन हर ले। तब व्यास पूजा के बाद भक्ति सिद्धांत सरेठागुर अपने जितने सारे शिष्य थे सभी को बुला करके बताए, देखो अभय कैसे मेरा मनोभाव समझ करके ये कविता में प्रकट किए। तो क्या था, एब्सोल्यूट सेंसेंट दाव हैज प्रूफ इम्पर्सनल कैलामिटी दाव हैज मूव दिस गिव्स अस ए लाइफ ए न्यू एंड फ्रेश वर्शिप दाई योर डिवाइन ग्रेस। ये जो कविता लिखा था ये कविता हमारे अभी ये इस्कान में जो जीबीसी गुरु है श्री श्रीमद भक्तिचार्य चरण गुरु महाराज वो बंगाली में बंगाली कविता में ये अनुवाद किए। तो ये स्ट्रेंजा का अनुवाद उन्होंने किया क्या, परम ब्रह्म परम पुरुष प्रमाण करिले तुमी निर्विशेष निर्वाण बाद त्याजिलो भारत भूमि नवीन जीवन लोभी मराताई आनंद है मग्न तुम्हार चरण वंदना करी मोहपाश करी भग्न। कितना सुंदर बंगाली कविता में ये प्रकट किया। हाँ तो ये ऐसा ही, तो ये प्रभुपाद का ये भक्ति सिद्धांत सरेठार का कृपा प्रभुपाद लाभ किए। ये गुरु का कृपा से प्रभुपाद ये पाश्चात्य देश में जाके ये चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था वो अपना वास्तव रूप प्रदान किए। तो इस्कान है, तो इस्कान जब प्रभुपाद प्रतिष्ठा किए तो इस्कान से कैसा ये महाप्रभु का वाणी हर दुनिया में फैल जाएगा। तो एक अद्भुत घटना हो चुका था जब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को राधा कृष्ण मंदिर में थे, उस समय क्या हुआ तो अपना एक शिष्या वो मालती देवी वो पाश्चात्य देश में जो एक दुकान है जिस दुकान में ये भारतीय सभी चीज मिलता है, तो उन्होंने किया कि वो दुकान से एक अद्भुत मूर्ति खरीद करके लाए थे। तो प्रभुपाद के सम्मुख जब उपस्थित के तो प्रभुपाद वो देखभाल कर बहुत आश्चर्यचकित हो गया, संभ्रम कर प्रणाम किए, आप बताए ऐसा आओ दो मूर्ति है कि नहीं। तो मालती देवी ने कहे थे जहां प्रभुपाद ऐसा और दो मूर्ति है तो जल्दी लेकर आओ। तो वो अपना स्वामी श्याम सुंदर प्रभु के साथ जाके वो दो मूर्ति वो बलदेव एंड सुभद्रा ये दो मूर्ति लाए थे। तो प्रभुपाद अपना टेबल पर रख कर बताया ये जो है ये कृष्ण ये जगन्नाथ ये कृष्ण जी का महाभाव का प्रकाश मूर्ति है जगन्नाथ, इनका बड़ो भाई ये बलदेव और बलराम का महाभाव प्रकाश रूप है, ये सुभद्रा कृष्ण बलराम के छठे बहन ये सुभद्रा का महाभाव का प्रकाश रूप, ये 3 इंची था वो 3 मूर्ति। तो प्रभुपाद ने बताया ऐसा देखभाल कर कोई ऐसा 3 फुट मूर्ति निर्माण कर सकते है कि। तो मालती देवी स्वामी जो श्याम सुंदर प्रभु उन्होंने बताया प्रभुपाद ये काम मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद तो बताए तो लिंग कार्ड से लकड़ी से ये 3 इंची मूर्ति से 3 फुट बनाओ। तो वो प्रभुपाद का निर्देश के अनुजाई वो देखभाल कर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3 इंची से 3 फुट बना दिया। तो उस समय क्या हुआ तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मूर्ति वो सैन फ्रांसिस्को राधा गोविंद मंदिर में प्रतिष्ठा किए। और कैसे आरती करना है प्रभुपाद शिक्षा प्रदान किए। तो वैसा ही कैंडल लेकर के वो आरती कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ प्रभुपाद प्रसाद लेकर के सो गए। वो आफ्टरनून में जब मंदिर में आए देखे मंदिर में वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मूर्ति नहीं थे, वो लेकर के अपना शिष्य चला गए अलग जगह पर गोल्डन गेट पार्क में। तो एक शिष्य था उन्होंने बताया प्रभुपाद ये तीन मूर्ति शिष्य सब लेकर के वो गोल्डन गेट पर में चला गया। प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए। आ उस समय प्रभुपाद क्रोधित होकर जा रहे थे, इस समय दूर से देखा क्या हुआ, एक अद्भुत घटना घट गई। क्या ना अपने शिष्य सब क्या किए, वो गोल्डन गेट पार्क में जितने सारे सब पाश्चात्य नर नारिया थे वो सभी को लेकर हरकृष्ण महामंत्र ये कीर्तन कर रहे थे। उस समय वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये तीन मूर्ति को परिक्रमा कर रहे थे। प्रभुपाद ये देखभाल करके प्रभुपाद का जब मन में जो क्रोध था वो शांत हो गया है। प्रभुपाद बचपन में जे रथ यात्रा उत्सव कर रहे थे वो उनका मन में आ गया है। ऐसा ही रथ यात्रा से हर दुनिया में ये चैतन्य महाप्रभु वाणी आसानी से प्रचार हो सकते हैं। तो प्रभुपाद शांत भाव से बोल रहे तुम सभी ये तीन मूर्ति लेकर के मंदिर में वापस चले आओ। तो वो सभी भक्त तीन मूर्ति लेकर मंदिर में वो स्थापन किए। तो प्रभुपाद सभी को लेकर के बोले जे ऐसा ही अपना मन से मन मंदिर से ऐसा विग्रह लेकर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जगन्नाथ उनका नाम है पतित पावन, तो जगत वासियों को दर्शन देने के लिए एक लीला प्रकट किए। कौन सा लीला? रथ यात्रा के समय अपना इच्छा से वो अपना उल्टा छोड़ करके मंदिर बाहर में चले आते हैं। तो उस समय जो आदमी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते वो जो मलेच्छ जवन अस्पृश्य जो है वो सभी को दर्शन दे करके सभी को उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन एक बार वो मंदिर छोड़ करके 9 दिन के लिए बाहर आते हैं। तो वो भक्त सुन करके ये रथ यात्रा उत्सव पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गए। किंतु उस समय ज्यादा समय नहीं था, 1 महीना। तो क्या करे, तो वो एक ट्रॉली ट्रक लेकर के ऐसा जगन्नाथ रथ निर्माण करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेकर के उत्सव पालन किए 1967 अर्थात प्रभुपाद 1965 पाश्चात्य जगत में गए थे। 1966 में ये स्कंद प्रतिष्ठा किए और 1967 ये रथ यात्रा वो ट्रक में कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे पाश्चात्य नरनार्य वो उस समय योगदान किए। इसके बाद 1968 जब रथ निर्माण करके ऐसा रथ यात्रा चालू किए तो उस समय बहुत सारे नरनारी वो उस समय भाग लेते। इसे इस तरह प्रभुपाद देख करके क्या किए, अपना जितने सारे शिष्य सभी को बोला पृथ्वी में जितना सारे बड़े बड़े शहर है ग्राम है सभी जगह को जाके ऐसा रथ यात्रा उत्सव पालन कर। तो ऐसा प्रभुपाद के निर्देश के अनुजाई वो रथ यात्रा उत्सव जब पालन किए, रथ यात्रा उत्सव से हर दुनिया में ऐसा ही प्रचार चल रहा है। बहुत सारे भक्त ये स्थान आ गए, ऐसा ही बहुत सारे वैष्णव बन गए। इसीलिए प्रभुपाद जी इसका निर्माण किए, ये एक वैष्णव मिलन तीर्थ है, विश्व के सारे आदमी को मिलन तीर्थ है, इसीलिए ये वैष्णव तीर्थ माना जाता है। ये वैष्णव तीर्थ में सभी वैष्णव है और ये जितने सारे वैष्णव है सभी कृष्ण के दास है और ये सभी चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, ये सभी शिला प्रभुपाद के अनुगामी है। इसीलिए जहां जहां इस रथ यात्रा उत्सव चल रहा है हर जगह में ऐसा ही बहुत सारे आदमी ये रथ यात्रा में भाग लेते हैं। जैसा ही प्रभुपाद का लास्ट प्रोजेक्ट ये हमारा इस्कान भुवनेश्वर, ये हमारा इस्कान भुवनेश्वर जो है, तो इस्कान भुवनेश्वर में जब रथ यात्रा चल रहा है तो बहुत सारे आदमी वो पूरी जाते नहीं, हमारा इस्कान ये भुवनेश्वर रथ यात्रा में भाग लेता है। ऐसा ही भीड़ होता है, वो हमारा मंदिर से वो गुंडीचा मंदिर तक ये फूल हो जाता है आत्मिका। ऐसा ही प्रभाव है ये रथ यात्रा के प्रचार से महाप्रभु का जो भविष्यत वाणी था और दुनिया में ये फैल गया। ऐसा ही दिन के दिन ये ज्यादा से ज्यादा भक्त बढ़ गई है। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की। जय श्री गुरु महाराज की। जय भक्त वृंद की। निताय गौर प्रमानंदे हरि बोल।
नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। एषा पुष्पांजलि शिल प्रभुपादाय समर्पयामि। शिल प्रभुपाद की। विल डू इट थ्री टाइम्स। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। एषा पुष्पांजलि श्रील प्रभुपादाय समर्पयामि। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। एषा पुष्पांजलि श्रील प्रभुपादाय समर्पयामि।
जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद।
प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद।
संसार दाबा नरणीडल को त्राणाय कारुण्य घना घनाता
संसार दाबा लोक प्राणाय कारुण्य घना घना
प्राप्त कल्याण गुणान वश कल्याण गुणान वश वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत बादी क्रमाद्यान मन सरसेन।
महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र माध्यान मन सुरसेन।
रोमांचकं पाशुतरंग भाज।
रोमांचकं पाशुतरंग भाज।
वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
वंदे गुरु श्री
শ্রীবিক্রয়ারাধানিত্যনা সিংহরতানি মন্দির মার্জনাদ
শ্রীবিগ্রহারাধানিত্যনা শৃঙ্গারতান মন্দির মার্জনাদ
যুক্তস্য ভক্তাংশ নিযুঞ্জতায়োপি
যুক্তস্য ভক্তাংশ নিযুঞ্জতোপি
বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
চতুর্বিদ শ্রী ভগবত প্রসাদ স্বাদান্ন তৃপ্তান হরি ভক্ত সংঘ
চতুর্বিধ শ্রী ভগবত প্রসাদ স্বাদান্ন তৃপ্তান হরি ভক্ত সংঘ
কৃতৈব তৃপ্তি ভজত সদৈব কৃতৈব তৃপ্তি ভজত সদৈব বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ শ্রীরাধিকা মাধবয়র পার মাধুর্য লীলা গুণরূপ নাম প্রতীক্ষণাশ দনলোপাশ বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
প্রতীক্ষণাশ দনলোপাশ বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
নিকুঞ্জ জোনারতি কেলি সিদ্ধয় যা জালি ভীর যোগটির অপেক্ষণীয়
নিকুঞ্জ যৌনরতি কেলি সিদ্ধালি ভীর যোগটির অপেক্ষণীয়
তত্রাদিদাক্ষাদি বল্লভ বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
তত্রাদিদাক্ষাদি বল্লভ বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
সাক্ষাধরিতে সমস্ত শাস্ত্রৈ উক্তস্তথা ভাবতৈব শোধি
সাক্ষাধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রে তথা ভাবত এব সাধি
কিন্তু প্রভুর্য প্রিয়ব তস্য বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
কিন্তু প্রভুর্য প্রিয়ব তস্য বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
প্রভুর্য প্রিয়ব তস্য বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
কিন্তু প্রভুর্য প্রিয়ব তস্য বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
যস্য প্রসাদাদ ভগবত প্রসাদ যস্য প্রসাদান্নগতি কুতোপি
যস্য প্রসাদাদ প্রসাদ যস্য প্রসাদান্নগতি কুতোপি
ধায়ং শুভং তস্য যশ স্ত্রীসন্ধং বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
ধায়ং শুভং তস্য যশ স্ত্রীসন্ধং বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দম
ধায়ং স্তুবং তস্য যশ স্ত্রীসন্ধম বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দ
ধায়ং স্তুবং তস্য సత్యయచ్రిసంధ్యం వందే గురో శ్రీచరణరవిందం
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 జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద
జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద
జయ జగద్గురు శిల ప్రభుపద జగద్గురు శిల ప్రభుపద
జయ జగద్గురు శిల ప్రభుపద జగద్గురు శిల ప్రభుపద
నమయో విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీ నీతి నామినే
నమయో విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీ ఇతి నామినే
నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే
నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే
శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త వృంద
శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త వృంద
హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి
హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి
హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి
హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి
హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి
హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి